HD Smartcast। आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है लाइव हिंदुस्तान प्रोडक्शन।
नमस्कार, ये रही आज की सबसे बड़ी खबरें।
बीजेपी जीती तो बंगाल में कौन होगा CM? दिलीप घोष ने दिया बड़ा संकेत। अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर अटकलें लगातार जारी हैं। और इस बीच राज्य में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक बयान देकर यह संकेत दे दिया है कि CM चेहरे के लिए बीजेपी की तलाश पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री उसे बनाया जाएगा जो चुनाव नहीं लड़ रहा है। घोष के इस बयान के बाद से ही यह अटकलें तेज हो गई हैं कि बीजेपी उन्हें ही तो राज्य का CM नहीं बनाएगी। घोष ने कहा, यह फैसला पार्टी करेगी लेकिन जरूरी नहीं कि किसी विधायक को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जब ममता जी मुख्यमंत्री बनी थी तब वह विधायक नहीं थी। बता दें कि साल 2011 में जब ममता बनर्जी ने लेफ्ट फ्रंट की सरकार को शिकस्त दी थी तब वह लोकसभा सांसद थी। चुनाव बाद वह भवानीपुर सीट से लड़ी। उस सीट पर उपचुनाव होना था। घोष ने कहा, पहले चरण के मतदान के बाद सिर्फ बीजेपी ही अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। तृणमूल कांग्रेस और उसके नेता परेशान हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तृणमूल कार्यकर्ताओं को अपनी हार का एहसास होता जाएगा। यह बयान के बाद तुरंत यह अटकलें जोर पकड़ने लगी हैं कि बंगाल में अगर बीजेपी जीतती है तो घोष ही अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दरअसल एकमात्र घोष ही ऐसा जाना पहचाना चेहरा है जो कि मिदनापुर से लोकसभा सांसद भी हैं और जो बंगाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तख्तापलट के बाद म्यांमार में नरसंहार जारी, खून की होली खेल रही सेना ने ली 500 लोगों की जान। म्यांमार में 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्तापलट के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों में मरने वाले लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों की संख्या 500 से अधिक हो गई है। एक निगरानी समूह ने मंगलवार को यह जानकारी दी। DPS समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को सत्ता के नशे में चूर सुरक्षा बलों के हाथों 14 अन्य लोगों की जान चली गई और यू असिस्टेंट एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स APP ने अभी तक देशव्यापी मौत का आंकड़ा 510 बताया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अब लोग सड़कों पर कूड़ा फेंककर सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं। म्यांमार में बिगड़ती स्थिति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंतित कर रही है। विशेष रूप से 27 मार्च को एक ही दिन में 110 लोगों की मौत के बाद चिंता काफी बढ़ गई है। AOPY संघ ने इसे आतंक का दिन करार दिया है। लोकतंत्र समर्थकों पर हालिया बड़ा अत्याचार यांगून के दक्षिण डगन टाउनशिप में देखने को मिला है। यहाँ अपने आंखों से खौफनाक मंजर देखने वाले लोगों का कहना है कि पिछले 2 दिनों के दौरान इलाके में सेना ने एक विशेष मुहिम को अंजाम दिया है जिससे पूरा मोहल्ला दहशत में आ गया है। कई रिपोर्टर्स में ये भी सामने आया है कि जब प्रदर्शनकारियों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो सेना ने उसमें भी दखल देने की कोशिश की और सेना ने ओपन फायरिंग के साथ ही ग्रेनेड्स भी फेंके थे। हालांकि इस दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वही सेना के हिंसक एक्शन के बावजूद म्यांमार में प्रदर्शनकारियों का विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला थमा नहीं है। कंगना रनौत ने पोस्ट में जमकर की सानिया मल्होत्रा की तारीफें, मिला ऐसा रिएक्शन। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचानी जाती हैं। वो सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट के जरिए कई बार हैरान कर देने वाली बातें करती नजर आ जाती हैं। हाल ही में कंगना का एक पोस्ट जबरदस्त सुर्खियों में आ गया है। इस पोस्ट में उन्होंने एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा की जमकर तारीफें कर डाली हैं। कंगना ने ये तारीफें सानिया की फिल्म पगलेट को लेकर की हैं। वहीं अचानक कंगना से अपनी तारीफें सुनकर सानिया भी इमोशनल होती दिखाई दी। कंगना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सानिया का एक पोस्ट रीट्वीट करते हुए लिखा, वो इतनी अच्छी हैं। मैं खुश हूँ कि लोग उनका टैलेंट पहचान रहे हैं। मैंने सुना है कि पगलेट नेटफ्लिक्स पर अद्भुत काम कर रही है। तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ सानिया, तुम सब कुछ डिजर्व करती हो और बहुत कुछ भी, तुम्हें ढेर सारा प्यार। वहीं कंगना के इस पोस्ट पर सानिया ने कमेंट भी किया है। उन्होंने इमोशनल वाला इमोजी बनाते हुए लिखा, बहुत बहुत शुक्रिया, ये वाकई मेरे लिए बड़ी बात है। वहीं सानिया के अलावा कंगना के इस पोस्ट पर उनके फैंस की भी ताबड़तोड़ प्रतिक्रियाएं मिल रही है। कंगना की तारीफों ने सभी को हैरान कर दिया है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर आज होगी सुनवाई। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमवीर सिंह की जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। याचिका में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का अनुरोध किया गया है। सिंह ने आरोप लगाया है कि देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को बार और रेस्तरां से 100 करोड़ रुपए एकत्र करने को कहा था। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त ने देशमुख पर पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं तैनाती से जुड़े भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया है। सिंह की ओर से मंगलवार को पेश वरिष्ठ वकील विक्रम ननकानी ने मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख किया और इस पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति दत्ता ने ननकानी से पूछा कि याचिका में क्या अनुरोध किया गया है और क्या यह सुनवाई के योग्य है। ननकानी ने कहा कि याचिका में राज्य के एक मंत्री के खिलाफ एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के लगाए गंभीर आरोपों की सीबीआई जांच कराने का मुख्य रूप से अनुरोध किया गया है। ननकानी ने कहा कि वह याचिका के सुनवाई योग्य होने के संबंध में अदालत को अपनी दलीलों से संतुष्ट करेंगे। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। बिहार, दरभंगा से हैदराबाद, कोलकाता और पुणे के लिए शुरू हुई हवाई सेवा। होली के मौके पर मिथिला वासियों को इस साल बेहतर सौगात मिली है। दरभंगा एयरपोर्ट से 28 मार्च से 3 नई जगहों के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है। स्पाइसजेट ने दरभंगा से कोलकाता, हैदराबाद और पुणे के लिए हवाई सेवा की शुरुआत की है। दरभंगा एयरपोर्ट से पूर्व से दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु और अहमदाबाद के लिए पूर्व से ही फ्लाइट का परिचालन हो रहा है। 3 नई जगहों के लिए फ्लाइट शुरू होने से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। यात्रियों की ओर से खासकर कोलकाता के लिए जल्द से जल्द हवाई सेवा शुरू किए जाने की मांग की जा रही थी। हालांकि इस खुशी के बीच एक निराशा वाली खबर यह भी है कि मुंबई के लिए प्रतिदिन अब एक ही फ्लाइट मिलेगी। इससे पूर्व दरभंगा से मुंबई के लिए 2 फ्लाइट का परिचालन किया जा रहा था। स्पाइसजेट ने अब इसमें से एक फ्लाइट का परिचालन पुणे के लिए करने का निर्णय लिया है। इधर नई जगहों के लिए हवाई सेवा की शुरुआत के पहले ही दिन यानी 28 मार्च को 2 फ्लाइट रद्द कर दी गई। हालांकि उस दिन 80 सीटर विमान कोलकाता के लिए रवाना हुआ। एयरपोर्ट डायरेक्टर विप्लव मंडल ने इसकी पुष्टि की। फ्लाइट कैंसिल करने का कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि इसके बारे में कंपनी के अधिकारी ही बेहतर जानकारी दे सकते हैं।
आप सुन रहे थे हिंदुस्तान का डेली न्यूज रैप, जो HT Smartcast की एक बीटा संस्करण का हिस्सा है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे @HT Smartcast या podcasts@hindustantimes.com पर ईमेल के द्वारा सुझाव दे सकते हैं।
आप सुन रहे हैं HT Smartcast और ये था लाइव हिंदुस्तान प्रोडक्शन HT Smartcast।